श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचनों में से सुने तो निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं। आप उन्हें शांति दे, छुटकारा और चंगाई दे ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यशाया की पुस्तक 57 अध्याय से देखेंगे जिसका विषय है धर्मी जन और दुष्ट में तुलना, धर्मी जन को सांत्वना और दुष्ट को दंड। मित्रों, आज ऐसा देखने में लगता है कि दुष्टों के ही ठाट और शान हैं, उनके पास पैसा भी है और वे ऊंची ऊंची जगहों पर हैं, परंतु युग के अंत में धर्मी जन को सांत्वना मिलेगी और दुष्ट को दंड। इस अध्याय के साथ ही यशाया की पुस्तक के अंतिम भाग का दूसरा उपभाग समाप्त होता है। इसे मैंने शीर्षक दिया है यहोवा का उद्धार जो दुख उठाने वाले सेवक के द्वारा प्राप्त होता है। वे जो विनम्रता पूर्वक इसे स्वीकार करते हैं धर्मी बनाए जाते हैं, वे जो इसे तुच्छ जानते हैं अपने कुकर्मों के मार्ग पर दंड के लिए अग्रसर हैं। यह अध्याय हमें एक चौराहे पर ले आता है जहां जीवन का मार्ग एक ओर चला जाता है और विनाश का चौड़ा रास्ता दूसरी ओर चला जाता है। गंतव्य और विभाजन दोनों यही हैं। तो आइए देखें धर्मी और दुष्ट में तुलना। यशाया के पुस्तक 57 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। धर्मी जन नष्ट होता है। आज परमेश्वर के अनेक महान संत संसार से कूच कर गए हैं। परमेश्वर ने उन्हें भावी घोर संकटों से अलग कर लिया है। अपनी सेवा आरंभ करते समय मैं अपने बारे में भी चिंतित था। उसके बाद हमारे संतान उत्पन्न हुए और मैं उसके बारे में चिंता करने लगा। अब मेरे दो बच्चे हैं और मैं उनके बारे में भी चिंता करता हूँ। मैं अपने और अपने परिवार से अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए उनकी चिंता करता हूँ क्योंकि उनका भविष्य बहुत कठिन होगा। यशाया 57 अध्याय उसके दो पद में लिखा है, वह शांति को पहुँचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। वह शांति को पहुँचता है, उसके मन में शांति वास करती है जो सीधी चाल चलता है। वह अपनी खाट पर विश्राम भी करता है। यदि खाट पर लेटे हुए वह मर जाए तो वह महाक्लेश से बचकर प्रभु यीशु की उपस्थिति में पहुंच जाता है। उन्हें चाहे कुछ भी हो, वे शांति में ही रहेंगे। यशाया 57:3 पद में लिखा है, परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। अब परमेश्वर दुष्टों के बारे में कहता है कि उनका तो वंश ही बुरा है। देखिए उनकी माताओं के लिए क्या कहा गया है। यशाया 57:4 पद में लिखा है, तुम किसकी हंसी उड़ाते हो, तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो, क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? वे धर्मियों के सताने हारे रहे हैं। अब तक तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया है। अपने चारों ओर देखिए, धर्मी जन पर कटाक्ष किए जाते हैं, दोष लगाए जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, उनका जीवन आसान नहीं होता है, उनका कठोर विरोध किया जाता है, परंतु दुष्ट बच जाते हैं। जो बुरा करता है लोग उसकी तारीफ करते हैं। मेरे मित्रों, यशाया 57:5 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। मेरे मित्रों, अंतिम दिनों के दुष्ट जन वे हैं जो परमेश्वर से मुंह मोड़कर मूर्ति पूजा करेंगे। वे सकल अनैतिकता और हत्या के दोषी होंगे। व्यभिचार और हत्या हमारे आज के युग के भी दो घोर अपराध हैं, पाप हैं। इसके साथ ही लालच है, जो एक प्रकार की मूर्ति पूजा ही है। यह आज के दुष्टों की दशा है। यशाया 57:6 पद में लिखा है, नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे, तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया है, क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? वे नाले के उन चिकने पत्थरों की भी पूजा करेंगे, अर्थात उनकी आराधना करेंगे जिनसे दानव मारा गया था। वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को त्याग कर, सृष्टिकर्ता को त्याग कर सब वस्तुओं की आराधना करेंगे। यशाया 57:8 पद में लिखा है, तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी, मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चढ़ी, तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली, तूने उनकी खाट को जहां देखा पसंद किया। पूर्व काल में छिपकर पाप किया जाता था, परंतु आज निर्लज्जता से खुलकर पाप किया जाता है। मुझसे किसी ने पूछा, क्या आपके विचार में पूर्व काल में भी उतना ही पाप था जितना आज है? मैंने स्वीकार किया कि हो सकता है कि उस युग में भी इतना ही पाप रहा होगा, परंतु वह गुप्त में था। उस समय मनुष्य पाप करने से लजाता था, डरता था, परंतु आज नहीं। मैंने एक बार टीवी पर एक सुंदर युवती को कहते हुए सुना कि वह जिस पुरुष के साथ रहती है वह उसका पति नहीं है। कार्यक्रम में उसकी प्रशंसा की गई कि वह स्पष्टवादी है। वह स्पष्टवादी तो है, साथ ही परमेश्वर की दृष्टि में पापी भी है। कुछ वर्षों पूर्व जिस बात को कान में भी नहीं कहा जा सकता था, आज खुले आम की जा रही है। पाप जीवन का मार्ग बन गया है। आज सदाचार के ऊंचे मूल्य नहीं है। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, गेहूं के साथ जंगली बीज भी उग रहे हैं। जी हाँ, इस संपूर्ण अंश में दुष्ट और धर्मी की तुलना की गई है। हम देखते हैं कि धर्मी के लिए शांति है। दूसरे भाग में यशाया धर्मी जन के लिए शांति की बात करता है। यशाया 57:15 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने जनों के लिए शांति की चर्चा करता है, क्योंकि वह महान और उत्तम है। वह अनंत काल का परमेश्वर है। मनुष्य अपनी सीमित आयु के साथ कैसा दुर्बल मनुष्य है। इस पृथ्वी पर मनुष्य अधिक समय तक जीवित नहीं है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह उन मनुष्यों को मुर्गी के समान अपने पंखों तले नीचे सुरक्षित रखेगा जो स्वयं पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के हैं उनके लिए कैसी शांति और सुरक्षा की व्यवस्था है। यह पद आज नहीं महाक्लेश के युग की चर्चा करती है। अब हम समय के अंत की चर्चा भी सुन रहे हैं। यशाया 57 उसके 16 पद में कहता है, मैं सदा मुकदमा लड़ता न रहूंगा न सर्वदा क्रोधित रहूंगा क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। वह अनंत परमेश्वर है परंतु वह पाप से सदा ही क्रोधित नहीं रहेगा क्योंकि पाप का उन्मूलन किया जाएगा। यशाया 57 उसके 17 पद में लिखा है, उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मन माने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। परमेश्वर समझाता है कि वह दुष्ट को दंड क्यों देता है। दुष्ट लालची होते हैं और वे परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि पवित्र परमेश्वर एक दिन इस विद्रोह का दमन करेगा। परमेश्वर को विद्रोही और घमंडियों को दंड देना अवश्य है। यशाया 57 के 18 पद में लिखा है, मैं उसकी चाल चलन देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उससे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक कराने वालों को शांति दूंगा। जो दुष्टता के मार्ग का त्याग करेंगे उन्हें परमेश्वर चंगाई देगा और उनका उद्धार करेगा। धर्मी के प्रति वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यशाया 57 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। एकमात्र परमेश्वर ही है जो पापी के मन में शांति लाता है। आइए अब हम देखेंगे दुष्ट का दंड। इन अंतिम तीन भागों में जहां भी परमेश्वर यशाया के द्वारा कहता है, यशाया 48 के 22 के सदृश यहां पर कहता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है, उन्हें रेखांकित कर लेना चाहिए। और मेरे विचार में यह एक प्रकट सत्य है। मानव इतिहास युद्ध और निरंतर संघर्ष का इतिहास है। यह देश देश में ही नहीं व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों में भी सच है। वे इसे स्पर्धा कहते हैं। आप व्यापार जगत समाज और धार्मिक क्षेत्र में भी इस स्पर्धा को देख सकते हैं। आप प्रत्येक नगर प्रत्येक गांव घर घर में यह सब कुछ देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट के लिए शांति नहीं है। परमेश्वर के बिना मनुष्य के मन में शांति नहीं है। आज तक तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। यशाया 57 उसके 20 पद में लिखा हुआ है, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मेरे प्रियो, यह संभवतः धर्मशास्त्र में दुष्ट का सबसे अधिक सजीव चित्रण है। दुष्ट विचलित समुद्र की नाई दुष्ट अपने मार्गों में विश्राम और शांति नहीं पाता है। वह एक भगोड़े अपराधी के समान जो मुक्ति और सुरक्षा की खोज में रहता है। एक बार एक 80 वर्षीय पुलिस स्टेशन में प्रवेश करके बोला, मैं 50 वर्षों से अपने मन में हत्या का बोझ लिए हुए हूँ। दंड तो किसी और ने भोगा परंतु वास्तविक अपराधी मैं हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि कानून के अनुसार यदि किसी ने आपका दंड भोग लिया है तो वास्तविक अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा या उसे बंदी भी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उस अपराध का दंड भोगा जा चुका है, अर्थात उसका सजा काट लिया गया है। इस अपराधी को सबसे कठोर दंड यह मिला कि वह 50 वर्ष पीड़ा और अपराध बोध में जी रहा था। उसके मन मस्तिष्क में शांति नहीं थी, जैसा कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में है। यशाया 57 उसके 21 पद में लिखा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यदि आज संसार में परमेश्वर के बिना शांति आ जाए तो वह परमेश्वर के वचन के विपरीत होगा। दुष्ट को संसार में शांति कभी नहीं मिलेगी, उसे आज भी शांति नहीं है। परमेश्वर ने कह दिया कि दुष्ट को शांति मिलेगी। यह परमेश्वर की लोकोक्ति है और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के सदृश है, यह कार्यकारी है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 57 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 58 से, जिसका विषय है इसराइल की दुष्टता का अनावरण, उनकी धार्मिक गतिविधियों को स्वीकार न करने के लिए परमेश्वर का स्पष्टीकरण, उनके कल्याण के लिए परमेश्वर की चिंता। मेरे प्रियो, यह अध्याय हमें यशाया की भविष्यवाणी के अंतिम भाग में लाता है, दुखित सेवक द्वारा आने वाले यहोवा की महिमा। इस भाग में हम राज्य की महिमा का वर्णन देखेंगे, भीतरी दुष्टता और बाहरी धार्मिकता परमेश्वर के अनुग्रह और महिमा के आगमन को विलंबित करते हैं और प्रभु यीशु के प्रयोजन को हानि पहुंचाते हैं। धर्मी जन जो कलीसिया के सदस्य हैं, अन्य जातियों के समान अनुचित भाषा का उपयोग करते हैं, व्यापार में छल करने वाले, सामाजिक जीवन में अनैतिकता का व्यवहार करने वाले कहते हैं कि वे परमेश्वर के मानकों में स्वीकार्य हैं। वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह और महिमा में बाधा उत्पन्न करते हैं। यहां बताया गया है कि महिमा क्यों रोकी गई। वे परमेश्वर के संबंधों को तुच्छ समझते थे, ठट्ठा करते थे, वे बाहरी दिखावे का धर्म निभा रहे थे और पूछते थे कि परमेश्वर क्यों ऐसा करता है। वे परमेश्वर और उसके मार्गों का न्याय करते थे। वे दिखावे का धर्म कर्म तो करते थे, परंतु चलते दुष्टता के मार्ग भी करते थे। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला था। मेरे प्रियो, इससे प्रकट होता है कि बंधुआई से उन्होंने सबक नहीं सीखा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। वे परमेश्वर की आलोचना कर रहे थे कि उसने उन्हें आशीष नहीं दी। दूसरी ओर देखिए कि वे कितने धर्मी थे। वे मंदिर जाकर भेंट और बलि चढ़ाते थे। यह उनकी निर्लज्जता, दुस्साहस, घृष्टता और परमेश्वर से प्रश्न करना था। यही मानवीय स्वभाव है कि वह धर्म का स्वांग रचे। उसका मन परमेश्वर से दूर है और उसके मार्ग दुष्टता के हैं। धार्मिकता का ढोंग प्रभु यीशु को घृणित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु यीशु लौदीकिया की कलीसिया से कहता है, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आज की अधिकांश कलीसिया और मसीहत के प्रति प्रभु यीशु का यही दृष्टिकोण है। आइए हम देखें इसराइल की दुष्टता का अनावरण। यशाया की पुस्तक 58 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। यशाया से कहा गया कि वह एक संदेश सुनाए जो ग्रहण योग्य नहीं होगा। यह संदेश उन लोगों के लिए था जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। उनके अपराध और पापों को प्रकाश में लाना था। यह श्रोताओं का कोप और दुर्वचनों को उत्प्रेरित करेगा। एक साहसी पुरुष ही ऐसा कर सकता था। मेरे विचार में आज प्रचार मंच पर मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रचार एक दुर्बलता है। उसकी प्राण घातक बीमारी की चर्चा नहीं की जाती। यदि आज डॉक्टर मनुष्य के साथ रोग निवारण में ऐसा करने लगे जैसा धर्म के क्षेत्र में किया जाता है, तो वह लापरवाही का दोषी ठहरेगा। जब डॉक्टर ने मुझे एक बार बताया कि मुझे एक घातक बीमारी है, तो डॉक्टर ने मुझे स्पष्ट किया कि मुझे किस प्रकार की बीमारी है। मेरे प्रियो, यदि उसने मुझे नहीं बताया होता कि मुझे क्या बीमारी है, तो शायद मैं इस उलझन में रहता कि मैं ठीक ठाक हूं। आपके साथ समस्या क्या है? यदि मैं स्पष्ट बात नहीं बताऊंगा तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। परमेश्वर भी स्पष्ट कह रहा है, वह चाहता है कि उसका सेवक मनुष्यों को बताए कि वे पाप के प्राणघातक रोग से पीड़ित हैं, आज वे पाप के कैंसर से पीड़ित हैं और अंततः वे अनंत मृत्यु में चले जाएंगे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अनंत काल तक का अलगाव है, और तब उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा ताकि वे फिर से प्रभु के पास आए। यशाया 58 उसके 2 पद में लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। मेरे विचार में इस कथन में परमेश्वर का तीव्र उपहास है। वे नियमित रूप से मंदिर की आराधनाओं में उपस्थित होते हैं। वे आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। आराधना विधि के पालन में वे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। वे आराधना में उपस्थित होने में अति आनंदित होते थे, परंतु उनका जीवन आचरण अपने विश्वास के सदृश नहीं था। उन दिनों में जो सच था वह आज भी सच है कि लोग उस प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं जैसा वे हैं। यशाया 58 के 3 पद में लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ध्यान दीजिए, वे चिढ़कर शिकायत करते थे कि वे उपवास रखने और शरीर को पीड़ित करने का कारण पूछते थे। क्या परमेश्वर यह सब नहीं देखता है? वे धार्मिक कृत्यों को निभाने के कारण अपने ही पीठ थपथपाते थे, परंतु उनके मन परमेश्वर से बहुत दूर थे। उन्होंने उपवास को अपने धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग बना लिया था। परमेश्वर ने उन्हें उपवास रखने के दिन तो नहीं दिए थे, परमेश्वर ने तो उन्हें पर्व के दिन दिए थे, और यह सच था कि उन्हें प्रायश्चित दिवस के समय कष्ट उठाना था और पाप के लिए उपवास रखना होता था। मेरे प्रियो, उपवास रखना उनकी आत्मा का बाहरी प्रदर्शन था, परंतु उन्होंने उपवास को अहंकार और घमंड का साधन बना लिया। वे उपवास पर गर्व करते थे, जबकि उपवास परमेश्वर और मानवीय आत्मा के मध्य व्यक्तिगत विषय था, वह सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था। प्रभु यीशु ने उन्हें उपवास का दुरुपयोग करने के लिए झिड़का भी था। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उन्होंने परमेश्वर के संबंधों के निमित्त उपवास नहीं रखा था। अतः प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, मत्ती उसके 6, 17, 18 पद में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी हाँ, सच्चा धर्म प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध है, और यह एक अत्यधिक गुप्त बात है। क्या आप अपने पति पत्नी के संबंधों की चर्चा बाहर जाकर के करते हैं? जी नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, यदि आपका संबंध प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत स्तर पर है तो आप दोनों के मध्य ही है। आप निश्चय ही उसकी गवाही देते हैं, परंतु व्यक्तिगत बातों की चर्चा नहीं करते। मेरे प्रियो, आप अपने धर्म के बारे में गर्व करते हैं या किसी धार्मिक कृत्य पर घमंड करते हैं, आपके लिए यह लज्जा की बात है। इनसे परमेश्वर को कोई संबंध नहीं है, जब तक कि वे आपकी मनोदशा प्रकट ना करें। ओह, हमें दिखाने की अपेक्षा सच्चाई के प्रदर्शन की कैसी आवश्यकता है। मेरे विचार में अनेकों ने यशाया के संदेश पर आपत्ति जताई होगी। उन्होंने कहा होगा, यशाया तू कहना क्या चाहता है? तू इन धार्मिकताओं पर उंगली उठा रहा है। वे प्रतिदिन आराधना में जाते थे और भेंट चढ़ाते हैं, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। उनका धर्म दिखावे का था, परमेश्वर के साथ उनका सच्चा संबंध नहीं था। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। हो सकता है कि आज जिस प्रकार हम संसार में लोगों को देखते हैं कि बाहरी दिखावा वो लोग करते हैं और उनका जीवन कुछ और होता है, आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें हो सकती है कि आप लोगों के सामने परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और आप अपना धार्मिकता दिखाते हैं, परंतु अंदर से आप वो नहीं है जो आपको होना चाहिए। लेकिन ध्यान दें कि परमेश्वर मन को जांचता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को रख करके देखें कि हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं सचमुच में परमेश्वर के सम्मुख सच्चा हूँ या धर्मी होने का नाटक कर रहा हूँ या ढोंग कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात को जाने कि परमेश्वर मन को जांचता है। यदि हमारे जीवन में कुछ खटास है या हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराइयां हैं, कड़वापन है, या हम परमेश्वर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए आज अवसर है कि इन सारी बातों को हम मान लें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं इस प्रकार का जीवन आगे नहीं जीऊंगा। जी हाँ, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो निश्चय ही प्रभु आपको क्षमा करेंगे। यहां पर हमारे अध्ययन का समय आज समाप्त होता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।